बीस सौ सतासी का पैसा क्लास चल रहा था, दूसरे पेज का मध्य आदि कर्तव्य नहीं करेगा। यदि की बात बाबा बाप मनुष्यों का प्रजापिता वो भी देहद का बाप है, और आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु वो भी देहद का बाप है, तो उनमें से कौन सा पहर जो स्वर की स्थापना करता है? आत्मा कौन सी है? आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु ही स्वर है, किसके द्वारा है? एक बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रजापिता, माने 500 करोड़ का बाप, ऐसे नहीं 2-4 करोड़ का बाप, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब का बाप, सब उसे फादर कह के मानते हैं, सब मानते हैं, पहचानता नहीं। ये संगम युग का पीरियड ही है जिसमें के साकार बाप को सारी मनुष्य सृष्टि पहचानती है, इसलिए मुरली में बोला है फादर कहते हैं तो जरूर फादर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं मनुष्य आत्मा, उन सब से आकर के मिलती है, तब उनका नाम होता है हेवनली गॉड फादर, हेवन की रचना करने वाला। वो तो एक बाप का ही काम है, कोई दूसरे मनुष्य मात्र का काम नहीं है। अब के एक ही संगम युगे आता हूँ, जानते हो हम सनातन बंदरे, आने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख देने वाला कह सकते हैं, ये तो है दुख की दुनिया, त्राहे त्राहे करते रहते हैं। भारत सुख धाम था, अभी दुख धाम है, हम आए हैं शांति धाम से। बाप कहते हैं लाइट हाउस बनो, एक आंख में दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे, ऐसे लाइट हाउस बनो। लाइट हाउस माने ऐसी ज्ञान की लाइट हो जिसमें एक तरफ सुखधाम घूमता रहे और दूसरी तरफ शांति धाम भी देखने में आता रहे। लाइट हाउस तो दूसरों को रास्ता बताता है, रोशनी देता है, तो सुखधाम और शांति धाम की रोशनी देने वाले बनो। एक नाटक पूरा होता है, गृहस्थ में रहते रहते पवित्र बनना है, ये नहीं कहा घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना, इसी में पुरुषार्थ की विशेषता है। जो पुरुषार्थ सिखाने वाला मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, आया हूँ पवित्र हेवन स्थापन करने के लिए। पहले प्योरिटी थी, अभी इम्प्योरिटी है, आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, क्योंकि ये ईश्वरीय फैमिली है। फैमिली में कौन कौन होता है? मुख्य कौन होते हैं? मुख्य तो माँ बाप होते हैं। तुम ईश्वरीय फैमिली में तुम ईश्वर बाप की गोद के बच्चे हो। दादा है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाप, लौकिक तो बाप भी है, एक पारलौकिक निराकार परम पिता परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा, ये रियलिटी है। लौकिक और परम पिता परमात्मा वो तो सब जानते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, अलौकिक बाप। तो लौकिक बाप कौन सा हुआ हम ब्राह्मणों का? ब्रह्मा लौकिक बाप हुआ, शरीर का बाप कहाँ चला जाएगा? शरीर का बाप होते हुए भी जब हम गोद के बच्चे बन जाते हैं, कोई हमें गोद ले लेता है, तो लौकिक बाप कौन कहा जाता है? जो हमको गोद लेता है वही हमारा लौकिक बाप कहा जाता है। उस लौकिक बाप से ही हमें प्रॉपर्टी मिलती है। तो पहले वाला बाप भूल जाता है। तो जब से हम ब्राह्मण बने, ब्राह्मण जन्म लिया, तो किस बाप के बच्चे हुए? ब्रह्मा बाप के बच्चे हुए। हम उस बाप से वर्षा लेने वाले बने, लेकिन अपूर्ण ब्रह्मा से अपूर्ण वर्षा मिलता है और संपूर्ण ब्रह्मा से संपूर्ण वर्षा मिलता है। जिन्होंने गोद ली वो ब्राह्मण बच्चे तो बन गए, लेकिन ब्राह्मण भी हाफ कास्ट होते हैं और फुल कास्ट भी होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा से फुल कास्ट ब्राह्मण सो देवता बनते, क्योंकि हमारी डबल मशीनरी है। शूद्र से ब्राह्मण बनना ये एक जन्म, और फिर ब्राह्मण से देवता बनना, माना संपूर्ण ब्राह्मण बनना माना देवता बनना। तो लौकिक बाप हमारा हुआ इस जन्म में। भले शरीर के जन्म हमने लिया, लेकिन जब से हमने ज्ञान लिया तो हम किसके बच्चे बन गए? किसकी गोद के बच्चे बन गए? ब्रह्मा बाप की गोद के बच्चे बन गए। लेकिन ब्रह्मा बाप अपूर्ण बुद्धि में आया, वो संपूर्ण ब्रह्मा बाप बुद्धि में नहीं आया, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। जो स्वर्ग की स्थापना का निमित्त बनता है, कैसे बनता है? वही अलौकिक ब्रह्मा जिसको सूक्ष्म वतनवासी समझते हैं, वो सूक्ष्म वतनवासी का मतलब ये नहीं कि सूक्ष्म वतन में कोई ऊपर ही रहता है। सूक्ष्म वतनवासी का मतलब है कि वो सूक्ष्म स्टेज धारी कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके वो आत्मा अभी भी पार्ट बजाती है। प्रैक्टिकल साकार सृष्टि में आकार स्टेज में रहती है। तो वो हुआ हमारा अलौकिक बाप, संपन्न स्टेज वाला बाप, जिसके द्वारा हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। किसका वर्षा मिलना है? परम पिता परमात्मा से वह पारलौकिक बाप जो निराकार स्टेज में रहने वाला है, उसका वर्षा मिलता है। तो निराकार बाप का वर्षा हमको साकार के द्वारा मिलता है। वर्षा निराकारी चाहिए या साकारी चाहिए? साकार में चाहिए। निराकारी वर्षा तो निराकारी ज्ञान रत्नों का होता है। ज्ञान रत्नों का वर्षा हमको थोड़ा ही चाहिए। हम क्या कहते हैं? ए पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, मुक्ति और जीवन मुक्ति दो। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का हमको साकार वर्षा चाहिए। साकार वर्षा मुक्ति का कैसा होता है? कि हम साकार सृष्टि पर रहें भी, लेकिन निराकारी स्टेज में रहें, निसंकल्पी स्टेज में रहें। पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही, इच्छा मात्र अविद्या। ये हुआ निराकारी वर्षा मुक्ति धाम का। और फिर साकार वर्षा क्या हुआ? कि जीवन में भी रहें और जीवन में रहते हुए भी, दुख अशांति से परे रहते हुए भी सुख का अनुभव करें, दुख का अनुभव न करें। तो लौकिक बाप से जो वर्षा मिलता है वो अल्पकाल का मिलता है। चाहे वो गोद में लेने वाला बाप हो, चाहे शरीर को जन्म देने वाला बाप हो, दोनों को ही लौकिक बाप कहेंगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का लौकिक बाप कौन हुआ? जिस ब्रह्मा को हमने पहले पहचाना, जिसके मुख से ज्ञान रत्नों को हमने सुना, जाना और धारण किया, वो हमारा लौकिक बाप हो गया। अब उस लौकिक बाप से अधूरा वर्षा इसलिए मिलता है कि वो संपूर्ण ब्रह्म नहीं है, अपूर्ण ब्रह्म है। तो मेलमाणियों अटारियों का वर्षा मिल सकता है, म्यूजियम का वर्षा मिल सकता है, सेंटर का वर्षा मिल सकता है, ईंटों के सुखधाम शांति धाम का वर्षा मिल सकता है। बाकी पारलौकिक बाप से जो स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जो बेहद का वर्षा मिलता है, वो इससे नहीं मिल सकता। तो वो हद का बाप हुआ, हद के बाप से हद का वर्षा और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ये रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है, मनुष्य तन में आए हैं, वो बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, बिंदु से बात करते हैं, बिंदु बिंदु आत्माओं से बात करते हैं। बिंदु बिंदु आत्माओं से कैसे बात होगी? बिंदु सुप्रीम सोल बिंदु बिंदु आत्माओं से कैसे बात करेगा बिना शरीर के? तो बिंदु बाप को भी साकार शरीर धारण करना पड़ता है, आत्माओं को भी अपना साकार शरीर होता है। आत्माओं से बात करने का मतलब ये नहीं है कि बिंदु से बात करते, उसका मतलब है जो आत्मिक स्टेज में टिके होने वाले बच्चे हैं, उन आत्मिक स्टेज वाले बच्चों से बात करते हैं। देह अभिमानी सांडों से परमात्मा बाप बात नहीं करते, और उनसे अगर बात करें भी तो वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, बाप की बात सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। उसको बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है। जिस्मानी सर्जन नहीं है, जिस्मानी हॉस्पिटल आकर के नहीं खोलता है। कौन सा हॉस्पिटल खोलता है? रूहानी हॉस्पिटल खोलता है, रूह को सफा देता है। रूह को सफा देने के लिए ज्ञान रत्नों का, ज्ञान शस्त्रों का, ज्ञान इंजेक्शन का आधार लेता है। जो देहधारी गुरु होते हैं, देहधारी मनुष्य होते हैं, वो जिस्मानी हॉस्पिटल खोलते हैं। परमात्मा बाप आकर के जिस्मानी हॉस्पिटल नहीं खोलता है, वो तो रूह बीज को सुधारता है। जब बीज सुधरता है तो शरीर रूपी वृक्ष अपने आप सुधर जाता है। तो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा निर्लेप कैसे होगी? निर्लेप माना जिसको कोई कर्मों का लेप छिप न लगे, पाप का भी लेप छिप न लगे, पुण्य का भी लेप छिप न लगे, अर्थात जिसको संग का रंग न लगे, वो हुआ निर्लेप। तो आत्मा निर्लेप नहीं होती है। हाँ, परमात्मा निर्लेप होता है। परमात्मा पार्थधारी जो भी होगा, इस सृष्टि पर प्रख्यात होगा, उसको किसी के संग का रंग लगेगा नहीं। अगर संग का रंग लगता है तो उसको परमात्मा पार्ट नहीं कहेंगे। वो परमात्मा पार्ट किसी से प्रभावित होने वाला नहीं होगा। सारी सृष्टि को वो प्रभावित करेगा, लेकिन वो किसी से प्रभावित होने वाला नहीं होगा। तो आत्माएं सब प्रभावित होती। दुनिया के बड़े से बड़े महात्माएं, बड़े से बड़े धर्म पिताएं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, कितनी भी सशक्त आत्माएं क्यों न रही हूं, वो भी इस दुनिया में आकर के नीचे गिरती गई और दुनिया भी नीचे गिरती गई। दुनिया भी नीचे से ऊपर नहीं उठा सके और खुद भी ऊपर से नीचे ही गिरते गए, ऊपर की दुनिया में नहीं वापस जा सके। तो ये परमात्मा बाप का ही काम है जो निर्लेप रहता है, संग के रंग में भी आता है, ऐसे नहीं दूरवाज खुशवाज बनता है। वो हमको भी दूरवाज खुशवाज बनना सिखाता नहीं। साथ में रहो, गृहस्थ की कीचड़ में भी रहो, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा को प्राम रखो। ये पाठ हमें परमात्मा बाप ही आकर के पढ़ाते हैं। मनुष्य तन में आए हैं, वो बाप बैठे तुम बच्चों से बात करते हैं। आत्मा में ही संस्कार है, ये संसार आत्मा जन्म लेती है। अभी तुम बच्चे परमपिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको ही याद करते हैं। किसके तन में बैठ के बोला ये वाक्य? किसके तन में बैठ करके बोले हैं? ब्रह्मा के तन में बैठ करके बोले तो ब्रह्मा के बाजू में ही बैठा हुआ है, फिर ऐसे क्यों कहता है सब उनको ही याद करते हैं? उनको दूर क्यों कर दिया जबकि बाजू में ही बैठा हुआ है? भविष्य की तरफ इशारा किया कि वो परमात्मा पार्टधारी भविष्य में प्रत्यक्ष होता है, वो परमात्मा बाप, उसको ही सारी सृष्टि सारी दुनिया याद करती है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये है कल्याणकारी मेला। इनको कुंभ या संगम कहा जाता है, यहाँ कोई वेद शास्त्र की बात नहीं है। कहा जाता है पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, जो न पढ़ा है वो बाप से बैठ सुनो। एक शास्त्र खंडनों से सब शास्त्र खंडन हो गए। इस रथ का रथी तो बाप है। राजयोग सिखाया तो बहुत होंगे जिन्होंने राजयोग सीखा, शास्त्रों में फिर घोड़े वाली गाड़ी दिखाई दी है, तो घोड़े वाली गाड़ी क्यों दिखाई दी? रथ भी दिखाया और साथ साथ में घोड़े भी दिखाई दिए, क्यों? शरीर रूपी रथ में प्रवेश किया और किसको कंट्रोल किया? आत्मा रूपी घोड़ों को कंट्रोल किया। तो शरीर रूपी रथ जिसमें प्रवेश करके परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है वो अलग चीज, और उस रथ को चलाने वाले आत्मा रूपी घोड़े अलग चीज। रथ जड़ होगा या चैतन्य होगा? रथ मन शरीर, शरीर तो जड़ ही होता है, और उस रथ को संचालित चलाने वाले चालित करने वाले घोड़े, वो चार दिशाओं के चार घोड़े उसमें दिए हुए जुटे हुए दिखाए गए। तो चार घोड़े हैं, चार धर्मों की बीज रूपात्मा, उन चारों प्रकार की बीज रूपात्माओं को जो देवता इस्लामी बौद्ध और क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं, आत्मा रूपी अश्व हैं, जो चारों दिशाओं के चार मुख्य धर्मों को कंट्रोल करने वाले हैं कयामत के समय में अपनी अपनी सहयोगी शक्तियों के साथ, जो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? अष्टरत्न, अष्ट देवताएं। वो चार घोड़े मुख्य हैं जिनकी लगाम, मन बुद्धि की लगाम परमात्मा बाप के हाथ में रहती है, सुप्रीम सोल के हाथ में रहती है। इसलिए देखा होगा कि शिवलिंग में कहीं कहीं चार मुख दिखाए जाते हैं। चार मुख का मतलब क्या हुआ? चार तरह से बोलता है क्या? पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चार दिशाओं में चार मुख दिखाए जाते हैं। तो पूर्वी सभ्यता का मुख, पश्चिमी सभ्यता का मुख, उत्तर और दक्षिण, जैसे कि चार मठों की स्थापना है भारतवर्ष में। कौन कौन से? चार धाम है ना, तो चार धाम की यादगार वो चार मुख का शिवलिंग दिखाते हैं। वो चार मुख वाला शिवलिंग पुराने से पुराना लिंग है जिसकी पूजा भारतवर्ष में होती चली आ रही है, संगम युग के ही पार्ट की यादगार है। उसको चार घोड़ों की गाड़ी दिखाई देते हैं। मुरली ने बताया है कि पहले बंगाल के साइड में, बंगाल में चार घोड़ों की गाड़ी का रिवाज था। बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं चढ़ते थे ऐसे रथ पर, उनकी सवारी होती थी। तो पहले की यादगार बताई, यानी यज्ञ के आदि में भी वो चार घोड़ों वाली गाड़ी थी। वो आत्मा यज्ञ से छोड़ गई, अपना संबंध संपर्क शरीर छोड़ करके चली गई। वही आदि वाली आत्माएं फिर दोबारा यज्ञ में आती हैं जब मम्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं। उन्हीं बच्चों में फिर से बाप दादा का माने ब्रह्मा की सोल का और शिव का प्रवेश होता है, और प्रवेश करके फिर वो रथ तैयार होता है जो आदि तो अंत में पार्ट जरूर चलता है। बात कहते हैं वास्तव में शास्त्रों में और शास्त्र के जो भक्ति मार्ग के चित्र हैं उनमें कोई सार नहीं, जब तक मैं उनका सार न बताऊं। उनमें तो घोड़े गाड़ी वाली गाड़ी दिखाई दी है। इन सब बातों को पढ़ते और देखते कितने विकारी पतित बन पड़े। मैं बैठ करके सभी शास्त्रों का चित्रों का सार समझाता हूँ। अब कृष्ण के चरित्र तो हो नहीं सकते, मात्र दिखाए हैं, वो कृष्ण भगवान के चरित्र हैं। कृष्ण भगवान होता है या शिव परमात्मा बाप के चरित्र हैं। मुरली में तो कहा हुआ है रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये सब है प्रजापिता की कहानी। नाम किसका डाल दिया है, रूप किसका डाल दिया है, कृष्ण का। शूटिंग पीरियड में नाम रूप किसका डाल दिया है, शूटिंग पीरियड में भी कहानी लिखी गई है जिसका नाम रखा गया है कथा। जैसे भक्ति मार्ग में कथा लिखी गई है श्रीमद् भागवत कथा, कथा माना कहानी, ऐसे शूटिंग पीरियड में भी एक चरित्र ग्रंथ लिखा गया है, उस पर नाम रूप डाल दिया है कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा का, ब्रह्मा का नाम रूप डाल दिया और उसका नाम रख दिया एक अद्भुत जीवन कहानी। कौन से अद्भुत कर्म किया जो संसार में कभी किसी ने नहीं किया, वो कौन सा अद्भुत कर्म दिखाया गया है। 300-400 कन्याओं माताओं को सिंध हैदराबाद से भगाकर कराची में ले जाने का, ये अद्भुत कर्म ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीरियड में, इतनी सख्त गवर्नमेंट के पीरियड में कोई मनुष्य मात्र का नहीं हो सकता। ब्रह्मा भी मनुष्य है, वो भी कृष्ण की आत्मा है जो सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। वो आत्मा तो बच्चा बुद्धि है, परमात्मा बाप के हर महावाक्य की गहराई का अर्थ भी नहीं समझती। अगर वो आत्मा अर्थ समझती होती तो संक्षेत्र के विनाश की घोषणा और स्थापना की घोषणा को दुनिया वालों के सामने मेमोरेंडम के रूप में नहीं छपवाती। तो ब्रह्मा की सोल बनाम कृष्ण की सोल, वो भी बच्चा बुद्धि आत्मा है। वास्तव में परमपिता परमात्मा शिव कृष्ण बच्चे के द्वारा परमात्मा पार्ट के रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता, वो तो प्रत्यक्ष होता है राम बाप वाली आत्मा के थ्रू। दो ही आत्मा विशेष है, एक राम और दूसरा कृष्ण। मुरली में बोला है राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। जब अंत समय होता है तब कहते हैं राम नाम सत्य है। इसका क्या मतलब हुआ कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी जब अंत समय होता है तब सबको पता लग जाता है, सब ब्राह्मणों को पता पड़ता है कि परमात्मा का असली पार्टधारी कौन है, राम वाली आत्मा है, देवियां हैं, अन्य देवताएं हैं या राम वाली आत्मा है। ये अंत में जाकर के पता पड़ता है, छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो कृष्ण के चरित्र नहीं हो सकते, बाप का चरित्र गाया जाता है। हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आप इस मनुष्य शक्ति का बीज रूप बाप हो। मनुष्य शक्ति तो साकार होती है, मनुष्य आत्माएं निराकार होती, बिंदु बिंदु आत्माएं, उन आत्माओं का बीज ज्योति बिंदु शिव, उसको निराकारी बाप कहेंगे क्योंकि निराकारी आत्माओं का बाप है। लेकिन साकारी मनुष्य मात्र का बाप तो जरूर साकार होना चाहिए। वो साकार मनुष्य शक्ति का बाप आत्माओं का, ऐसी आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है उनका बाप है, उसको कहते हैं परमात्मा। परमात्मा अर्थात परम आत्मा, कैसी आत्मा, परम किससे भेंट की गई, ये परम आत्मा ये भेंट किससे की गई, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के साथ भेंट की गई या जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला ही नहीं उससे भेंट की जाएगी? जन्म मरण के चक्र में ना आने वाला तो सिर्फ एक ही है, उसकी भेंट किसी से नहीं की जा सकती, नवरत्नों की गिनती में भी उसको नहीं कर सकते, क्योंकि नवरत्न तो है पत्थर अर्थात पत्थर बुद्धि बनने वाले। जो पत्थर बुद्धि बनते हैं वही पारस बुद्धि भी बनते हैं। बनाने वाला है अभोक्ता निराकार शिव। तो वो बीज रूप बाप है सारी शक्ति का, चैतन्य है और ज्ञान का सागर है। सारी नॉलेज उस आत्मा में है। सारी वृक्ष की नॉलेज किसमें होती है? बीज में। बीज में जैसे सारा वृक्ष समाया हुआ है, बीज हाथ में आ जाए तो बीज देखने से ही पता लगता है ये कौन से वृक्ष का बीज है, कैसा होगा, कैसा फल देगा, कैसा फूल देगा, बीज में सारी नॉलेज समाई हुई है। शास्त्रों अनुसार पढ़ाई से जाकर के तुम राजा बनते हो। कौन से शास्त्र अनुसार? मुख्य में मुख्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। सब शास्त्रों का माई बाप, लेकिन गीता शास्त्र कोई कागज का लिखा हुआ शास्त्र नहीं है। असली गीता शास्त्र वो तो भगवान के मुख से बोला जाता है। वैसे भी जितने भी शास्त्र हुए हैं, चाहे बाइबल हो चाहे कुरान हो, वो तो मनुष्यों ने बाद में बैठ करके लिखे, कोई धर्म पिताओं ने बैठ करके उन शास्त्रों की रचना नहीं की। ऐसे ही भगवान बाप भी आकर के सन्मुख बैठ करके सुनाते हैं, उस समय वो शास्त्र लिखा नहीं जाता है, बाद में लिखा जाता है, शूटिंग पीरियड में भी बाद में लिखा जाता है। लेकिन परमात्मा बाप जो सन्मुख बैठ सुनाते हैं वो ही असली गीता है। उस गीता में कोई मिक्सरिटी नहीं हो सकती, और जहां मिक्सरिटी हो जाती है कुछ न कुछ ऐड हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, वो मनुष्यों की बनाई हुई गीता हो जाती है। जैसे परमात्मा बाप ने जो कुछ बोला वो अगर टैप रिकॉर्ड में टैप भी हो गया तो टैप को असली गीता नहीं कहेंगे। क्यों? टैप ही है, टैप भी है नंबर दो की गीता, अव्वल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि टैप मशीन ज्यों का त्यों तो सुनाएगी, लेकिन सुनाने वाले के हाव भाव वाइब्रेशन और इशारों को व्यक्त नहीं करेगी। तो उसमें अंतर हो जाएगा या नहीं? अर्थों में जरूर अर्थों में अंतर हो जाएगा, और जहां अर्थों में अंतर हुआ वहां मिक्सरिटी हो जाती। तो परमात्मा बाप का जो असली शास्त्र है वो सन्मुख मुख से सुनाया जाता है। बाप जो कुछ सन्मुख मुरली मुख से सुनाते हैं, मुख से बजाई हुई को ही मुरली कहा जाता है। उस मुरली को फिर दूसरा कोई बैठ करके पढ़ता है या टेप रिकॉर्ड में सुनाई जाती है वो भी मुरली नहीं कहेंगे, असली जादू उसमें नहीं हो सकता। जो सन्मुख सुनने में मजा है वो टैप से अथवा मुरली से पढ़ने में मजा नहीं हो सकता, उसका प्रभाव वो नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं तेरी मुरली में जादू। तो बाप में ज्ञान है। संसारों अनुसार पढ़ाई से जाकर के तुम राजा बनते हो, ये अव्यभिचारी ज्ञान और व्यभिचारी ज्ञान के संस्कार तुम इस समय बढ़ते हो आत्मा संग मिल जाए। कोई तो एक परमात्मा बाप से ही पढ़ाई पढ़ते हैं, दूसरों की बात एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, दूसरों की बात उनकी बुद्धि में नहीं घपेगी। कोई फिर ऐसे होते हैं कि परमात्मा बाप से भी सुनेंगे, फिर अनिश्चय पैदा होगा तो और गुरुओं से भी सुनने लग पड़ेंगे। तो संसार कहाँ भरे जाते हैं? व्यभिचारी वृत्ति और अव्यभिचारी वृत्ति, व्यभिचारी ज्ञान और अव्यभिचारी ज्ञान के संसारों का बीजारोपण कहाँ होता है? अभी अभी संगम में। बाप में भी ज्ञान के संस्कार हैं, शक्ति के आदि मध्यंत का ज्ञान उसी में है, तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हम तत्व ज्ञानी हैं। बाप आकर जो नाली सुनाते हैं उसका नाम रखते हैं गीता, उसका नाम कोई ब्रह्मज्ञान नहीं रखते हैं। वो अगर शरीर धारण करता है तभी बोध चालता बनता है, अगर आत्मा शरीर न धारण करे तो जैसे जड़वत हो जाती। तो वो परमात्मा बाप आकर के नॉलेज सुनाते हैं, उस सुनाने वाले नॉलेज का नाम गीता रखा जाता है। बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं। यहाँ ही शब्द क्यों लगाया? यानी बाप के सिवा और कोई मनुष्य मात्र की ताकत नहीं है जो देवी देवताओं की राजधानी स्थापन कर सके। और दूसरे धर्म पिताएं आते हैं वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी स्थापन कोई भी नहीं करते। ये बाप में ही विशेषता है कि वो आकर के राजधानी भी स्थापन करता है, पुराने राज्यों का पुराने धर्म का विनाश भी कराता है और एक राजधानी स्थापन कर देता है। एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक मत वाली राजधानी स्थापन करता है। ये काम दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र नहीं कर सकता, कोई गुरु ये काम नहीं कर सकता। अभी राजधानी स्थापन होनी है इसलिए पवित्र बनना है। राजधानी स्थापन कब होगी और हिलती डुलती कब तक रहेगी? क्या कारण है हिलने डुलने का और क्या कारण है जिससे राजधानी स्थापन हो जाती है? राजधानी कौन सी है? राजधानी कौन सी स्थापन होनी है? नई दुनिया की भी वही राजधानी होती है और पुरानी दुनिया की भी वही राजधानी है। वो ऐसी राजधानी है जिस पर बाप की भी नजर लगी हुई है और सारी दुनिया की नजर उस राजधानी पर लगी हुई है। क्या नाम है उस राजधानी का? दिल्ली राजधानी। दिल्ली बाप दादा का भी दिल है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिस पर सारी दुनिया के हर मनुष्य हर धर्म के मनुष्य हर धर्म वाले ने राज्य किया है। दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें हर धर्म वाले ने राज्य किया हो टाइम टू टाइम। तो राजाओं की वो धारणा शक्ति है। कलयुग में भी वो दिल्ली राजधानी थी और कलयुग के अंत में भी वो दिल्ली राजधानी है, मध्य में भी दिल्ली राजधानी होती है। ये ऐसा स्थान है जहां का प्रभाव सारे भारत पर पड़ता है और सारे भारत का प्रभाव राजधानी के ऊपर पड़ता है। सारे भारत का अगर वायुमंडल देखना हो तो राजधानी का वायुमंडल देख लो। इसलिए वाणी में बोला हुआ है दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार हो जाता है। इतनी जिम्मेवारी है दिल्ली वालों पर। तो सुधार किसका होगा? पहले चैतन्य का होगा या जड़ का होगा? तब चैतन्य आत्माएं भी नीचे गिरी हुई पड़ी है। इस पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं है, सब पतित हैं। और पतित क्यों है? क्योंकि एक परमात्मा बाप के प्रभाव में प्रभावित होकर के नहीं रहते हैं, इसलिए पतित हैं। अगर एक बाप के प्रभाव से ही प्रभावित होकर के रहे तो जरूर पावन बन जाए। एक बाप का नॉलेज ऐसी पावर है जिसमें पतित से पावन बनाने की ताकत है। तो राजधानी स्थापन तो जरूर होनी है। ऐसे नहीं कि राजधानी हमेशा हिलती डुलती रहेगी या विदेशियों के प्रभाव में रहेगी, चाहे वो चैतन्य राजधानी हो और चाहे वो जड़ राजधानी हो, उसको प्रभाव मुक्त होना जरूर है। और जब प्रभाव मुक्त हो जाएगी तो राजधानी स्थापन होने से स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। इसलिए तुम बच्चों को पवित्र बनना है। पवित्र बनना कोई स्कूल में पवित्र बनने को नहीं कहा जाता था कि कर्मेंद्रियों से पवित्र बन गए तो पवित्र होना हो गया, नहीं, वाइब्रेशन से भी पवित्रता होनी चाहिए, दृष्टि में भी पवित्रता होनी चाहिए। दृष्टि विभिचारी न बने, जैसे सत्युग में दृष्टि होती है, राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, किसी और में ललचायमान नहीं होगी। तो अगर दृष्टि व्यक्ति तक पवित्रता धारण कर ली ब्राह्मणों के संगठन ने, तो समझो राजधानी स्थापन हो गई। जोर से बोलो, रावण का राज्य है, राम का राज्य है या रावण का राज्य है? स्वतंत्र माना अपनी आत्मा का तंत्र भारत में है, आत्मा के तंत्र में है, है? भारत किसे कहा गया है? मुरली में बोला है रामायण की सारी कथा भारत के ऊपर है, सिर्फ समझाने का खिर चाहिए। तो रामायण की सारी कथा भारत के ऊपर है या राम सीता के ऊपर? राम सीता को ही भारत कहा गया ना, वो ही भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्माएं हुई ना। तो जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्माएं हैं, क्या उनके ऊपर से ग्रहण पूरा हट गया है माया का? मधुबन में माया आती है कि नहीं आती है? मतलब सन 36 से जो प्रवेश नहीं है, सन 36 से वो बात अलग। एक बात तो अगर प्रवेश है तो प्रभाव मुक्त होना चाहिए, ये सिद्धांत बनाया ना। तो ये जरूरी नहीं है कि परमात्मा प्रवेश है तो माया के प्रभाव से मुक्त हो गया, नहीं। परमात्मा के प्रवेश तो 108 बच्चों में भी होता है, लेकिन सदाकाल का प्रवेश नहीं होता। सदाकाल का प्रवेश नहीं कहेंगे, बैल के ऊपर हमेशा सवारी नहीं होती है। वो बाप तो और बच्चों में भी प्रवेश करता है टाइम टू टाइम, लेकिन डायरेक्शन ये दिया हुआ है कि तुम बच्चे मुकर्रर रथ के लिए ऐसे समझो कि हमेशा शिव बाबा ही बोलता है, तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ रहेगी? शिव बाबा की तरफ रहेगी। अगर तुम ऐसे समझो कि शिव बाबा कभी इस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और कभी नहीं प्रवेश करता है, तो तुम्हारी बुद्धि किसकी तरफ जाएगी? रथ की तरफ चली जाएगी, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ये सेफ्टी के लिए बताया हुआ है, बाकी ऐसे नहीं कि शिव बाबा हर समय प्रवेश रहता है रथ में, नहीं। वो तो आता है और दूसरे बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करता है। सारी विश्व को उसे पावन बनाना है, कोई एक स्थान से बंधा हुआ थोड़े ही है। तो राजधानी स्थापन होनी है, अभी हुई नहीं है, अभी भी राजधानी हिलती डुलती है। क्यों हिलती डुलती है? क्योंकि अभी एक के प्रभाव से प्रभावित हो करके हम नहीं रह पाते, कोई न कोई दूसरों से भी प्रभावित हो जाते। तो बुद्धि को पवित्र बनाना है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। जो शास्त्र में लिख दिया है संभवामी युगे युगे, मैं हर युग के अंत में आता हूँ, तो शास्त्रों में क्यों लिख दिया? क्या झूठा लिखा है? झूठा नहीं लिखा है, लेकिन शूटिंग पीरियड में हर युग के अंत में परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है। 76 में वो प्रत्यक्ष होता है शंकर के नाम रूप से, जब सतयुग की शूटिंग पूरी होती है। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में ही ये प्रत्यक्षता होती है। और 89 में प्रत्यक्ष होता है कृष्ण बच्चे के द्वारा। कृष्ण कोई सतयुग वाला कृष्ण नहीं, संगम युग वाला वो कृष्ण जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, कृष्ण के साथ कंसी जरा सिंधी भी थे। तो कौन से युग में होते हैं? संगम युग में अभी ही कंस के साथ कंसी जरा सिंधी का पाठ चल रहा है। तो कृष्ण के रूप में प्रत्यक्षता। और तीसरी, द्वापर युग का शूटिंग का अंत माना 96-97, ये पीरियड है कलयुग के अंत में प्रत्यक्ष होना वैष्णव के रूप में, विष्णु देवता यानी विष्णु भगवान के रूप में। राधा और कृष्ण दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, राम सीता राधा कृष्ण चारों आत्माओं के स्वभाव संस्कार में एकता आ जाए, तो कहेंगे विष्णु की प्रत्यक्षता। चार भुजा रूपी चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाए, और फिर अंत में सारी दुनिया के लिए पलंग की धर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। कलयुग के अंत की शूटिंग में पुनः प्रत्यक्ष होता है लास्ट में। तो चारों युगों के अंत में परमात्मा बाप विशेष विशेष रूप से प्रत्यक्ष होता है, इसके लिए शास्त्रों में लिख दिया है संभवानी युग युग। वास्तव में मैं युग युग नहीं आता हूँ, माने 1250 वर्ष के युग के बाद नहीं आता हूँ, बार बार मुझे आने की कोई दरकार नहीं है। मुझे और देवताओं को कितनी गालियां दे दी, ये गाली देना भी ड्रामा में नूंद है। क्या गालियां दी हैं? तो वो सर्वव्यापी है, कृतयुग में भी जन्म लेकर के आता है हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, सिंह का रूप धारण करता है, शेर में प्रवेश कर जाता है, त्रेता में भी आता है, द्वापर में भी आता है, कलयुग में भी आता है। तो ऐसे नहीं कि मैं हर युग में आता हूँ और जानवरों में भी प्रवेश करता हूँ, मनुष्यों में भी प्रवेश करता हूँ, नहीं। ये तो मुझे गाली देना हो गया। क्या परमात्मा बाप मनुष्यों को सुधारने के लिए आएगा या जानवरों को सुधारने के लिए आएगा? वो किसके लिए आता है? वो आता है मनुष्यों को सुधारने के लिए। जो मनुष्य है वो ही 84 जन्म लेते हैं, जो कम जन्म लेने वाले हैं वो तो जानवर मिसल आत्मा है, उनकी बुद्धि में पूरी बात परमात्मा की बैठती नहीं, वो परमात्मा बाप की पूरी वाणी को समझ नहीं सकते। अंत तक, आज से लेकर अंत तक परमात्मा बाप के सम्मुख होकर बैठ नहीं सकेंगे, इशारों को कैच नहीं कर सकते, वो मनुष्य से डायरेक्ट संपन्न देवता नहीं बनते। तो ये तो गाली दे दी है कि कच्छ मच्छ अवतार लेकर के परमात्मा बाप आता है। अभी बाप तुम बच्चों को नाली दे करके पवित्र बना करके धनी का बनाते, ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते। ये अनाद अविनाशी ड्रामा है, सब आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, परम पिता परमात्मा का भी पार्ट है। बाबा ने समझाया है कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, फिर इतना बड़ा बनाए क्यों दिया है? बड़ा लिंग बनाने का मतलब क्या हुआ? लिंग का अर्थ क्या है और उसमें रखे हुए बिंदु का अर्थ क्या है? अर्थ है तब तो चित्रकार ने चित्र बनाया है। बिंदु का अर्थ है सूक्ष्म ज्योति बिंदु, निराकार शिव ज्योति, वो आत्मा के लिए इंडिकेशन है। जो सोमनाथ के मंदिर में लिंग में हीरा रखा हुआ था वो सुप्रीम सोल की यादगार है, और जो लिंग दिखाया गया है लाइट का गोला, वो लाइट का गोला कोई स्थूल गोले की बात नहीं है, वो है चैतन्य ज्ञान लाइट का स्वरूप, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। इतना ज्ञान और मनुष्य आत्माओं में नहीं हो सकता, इसलिए आत्माओं को शालिग्राम के रूप में छोटा दिखाते हैं और परमात्मा को लिंग के रूप में बड़ा दिखाया गया, तो उस ज्ञान की लाइट को बड़ा करके दिखाया गया। वो ज्ञान का सागर है और आत्माएं सिर्फ ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो इसलिए उसको दिखाने के लिए चित्रकार ने ऐसा चित्रण किया है, अर्थ को बताने के लिए। बाकी कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है, वो भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। आत्मा का रूप क्या है? स्टार मिसल रूप है, चमकता है ब्रकुटी के बीच है जब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, तो वंडर हुआ ना। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में भी पार्ट है, भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ। क्या सर्विस करते हैं? उसको उस रूप में साक्षात्कार कराते हैं, तो भक्ति मार्ग में द्वापर युग से साक्षात्कार होना शुरू होते हैं, तो ये भी सेवा हुई। इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है, इस समय संगम युग में क्या बोला है उस पार्ट के लिए? पार्ट फिर साकार में साकार सृष्टि पर होगा या आकारी सूक्ष्म वतन में होगा? पार्ट तो साकार सृष्टि पर ही बजाया जाता है, तो वंडरफुल पार्ट है। वंडरफुल पार्ट परमात्मा का भी बताया और फिर शंकर का भी बताया कि शंकर का इतना वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। तो दो के वंडरफुल पार्ट हैं, दो अलग अलग पार्ट हैं या एक ही है? पार्टधारी तो एक ही है, साकार में व्यक्तित्व तो व्यक्त होने वाला एक ही है, लेकिन उसमें अव्यक्त आत्माएं दो कार्य करती है। कल्प कल्प तुम बच्चों का ये पार्ट चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं। सबसे पहला एक्टर है बाबा। जो नंबरवार एक्टर्स हैं उनमें पहला कौन है? वो मुख्य एक्टर है, वो डायरेक्टर भी है, मुख्य एक्टर भी है और क्रिएटर भी है। सबसे जास्ती ड्रामा क्रिएट कौन करता है? मुरली में बोला है सबसे जास्ती ड्रामा क्रिएट करता है ये व्यास। वी माने विशेष, आस माने बैठ जाए, जो खास इसी काम के लिए बैठ जाता है उसके लिए शास्त्रों में गायन है, ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो ब्रह्मा के सब संकल्प से नई दुनिया की स्थापना होती है। तो पहला पहला मुख्य एक्टर है बाबा। बाप के पास जो नॉलेज है वो सबको देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे की राजधानी स्थापन हो रही है, अब पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाओ, अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो राजधानी में तो सब तरह के चाहिए, पढ़ाई पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे फेल होंगे, तो स्वर्ग में तो जाएंगे लेकिन पद पद नीचा हो जाएगा। तो जो सीट चाहिए सो लो, पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए, इसके द्वारा बेहद के बाप द्वारा, द्वारा मीडिया हुआ ना, तो बेहद का सुख मीडिया के द्वारा मिलेगा ना, साकार के थ्रू ही तो मिलेगा। बेहद बाप के द्वारा ये सुख का वर्षा लेना है जीवन मुक्ति का, कोई मनुष्य मात्र के द्वारा ये वर्षा नहीं मिल सकता। जगदम्बा को कहा जाता है गॉड इज ऑफ नॉलेज, कहां से नॉलेज मिली? तो नॉलेज कहां से मिलती है? शिव ज्योति बिंदु से है? ज्योति बिंदु से नॉलेज माना समझ नहीं मिलती। जगदम्बा को ये यज्ञ के आदि में भी समझ किससे मिलती है? डायरेक्ट बिंदु पहले जगदम्बा में नहीं प्रवेश कर देता जो उसको समझ मिले। हाँ प्रवेश करता है, प्रवेश तो माता में भी होता है पिता में भी होता है। माता है आधार और पिता है बीज। ऐसे नहीं कहेंगे कि किसने पहले बच्चे को पैदा किया, बाप ने पैदा किया या माँ ने पैदा किया, ऐसे कहेंगे नहीं। दोनों के संयोग से बच्चे की उत्पत्ति होती है, दोनों का साथ चाहिए, लेकिन माँ में प्रवेश करता है सुनने सुनाने के लिए और बाप में उसी क्षण प्रवेश करता है समझने और समझाने के लिए। तो ज्ञान किसको कहा जाता है? समझ को ही ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान को ही बीज कहा जाता है। तो बीज का आधार माता बनती है, उस समझ को धारण करने वाली माता बनती है। उस ज्ञान के बीज को धारण किसने किया? पहले पहले माता ने धारण किया, तब कृष्ण बच्चे का जन्म हुआ। माने ब्रह्मा की आत्मा को इस बात का बोध हुआ कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, मुझे कृष्ण के रूप में पार्ट बजाना है आने वाली नई दुनिया में, ये उसको बोध होता है। ये बोध होना माना आत्मा के जो मुख्य पार्ट है रंगमंच पर उसकी जानकारी हो जाना कि मैं आत्मा कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूं, हु एम आई, मैं आत्मा कौन हूं, कौन ग्रुप विशेष की हूं, कितने जन्म लेने वाली हूं, ये पक्का पता पड़ जाए। तो जगदम्बा को कहा जाता है गार्डेज ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज कहां से मिली? ज्ञान की देवी को नॉलेज कहाँ से मिली? वो जगदम्बा जिसकी पूजा होती है मंदिर बना करके, ज्ञान की देवी मानी जाती है, विद्या की देवी मानी जाती है, कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज में उस जगदम्बा का चित्र ऊपर लगाया जाता है, तो ज्ञान की देवी हुई, उसको ज्ञान कहाँ से मिला? देवी है तो देवी के पीछे कोई और होगा कि नहीं होगा? है भक्त लोग तो कहते हैं जय माता दी, जब देवी की पूजा करते हैं तो देवी ही देवी याद रहती है, उनको ये नहीं याद रहता कि देवी के पीछे कोई देवता भी होगा। देवी वो कोई विधवा होगी क्या? विधवा माताओं की भारतवर्ष में मान्यता होती है? नहीं होती, उनको तो हे दृष्टि से देखा जाता है। कौन सी माताओं की मान्यता होती है? सधवाओं की मान्यता होती है। तो देवी के साथ देवता भी है, वो देवता हुआ बाप, तो गॉडेस ऑफ नॉलेज है तो गॉड भी जरूर होगा। इसलिए पूछा कि नॉलेज कहां से मिला? जगदम्बा को नॉलेज कहां से मिली? प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा को किसने दी? ब्रह्मा को नॉलेज किसने दी? जगदम्बा को नॉलेज मिली प्रजापिता ब्रह्मा से। और फिर पूछा ब्रह्मा को नॉलेज किसने दी? वाणी में तो बोला है या ब्रह्मा ही जगदम्बा है, तो कैसे? हाँ, जिस ब्रह्मा को टाइटलधारी ब्रह्मा के रूप में दिया गया है, जिसका टाइटल दिया गया है प्रजापिता ब्रह्मा, उस ब्रह्मा को भी जगदम्बा से मिली, और जगदम्बा को जगत पिता से मिलती है। जगत पिता से जगदम्बा को विश्व की वार्ता ही मिलती, ज्ञान की ज्ञान का डोज मिलता, और जगदम्बा से सारी दुनिया को ज्ञान का डोज मिलता। तो शिव परम पिता परमात्मा ने ये नॉलेज दी ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अब ये नॉलेज मिल रही है। जो ब्राह्मण फिर यज्ञ के निमित्त बने, इसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्यों शिव ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहा जाता? प्रजापिता ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहा जाता? ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहा जाता? जगदम्बा ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहा जाता? रुद्र ज्ञान यज्ञ क्यों कहते हैं? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है। ये कार्य बहुत कठिन है। पुरानी दुनिया को नष्ट करना, पुराने संसारों को नष्ट करना, पुरानी सड़ी गली राजाई के संसारों को नष्ट करना, पुराने धर्मों का नाश करना, ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। ये तो परमपिता परमात्मा का ही कार्य है, जो रौद्र रूप धारण करता है, विकराल रूप धारण करता है, और पुराण पंथियों का डब्बा गोल कर देता है इस दुनिया। ये धर्म पिताओं का काम नहीं हुआ। तो इसका नाम पड़ता है ज्ञान यज्ञ का रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ के आदि में भी विनाश ज्वाला स्थापना के साथ प्रज्वलित हो चुकी थी। जितनी जितनी स्थापना होती है उतना उतना विनाश भी जरूर होता जाता है। ऐसे नहीं कि स्थापना होगी और विनाश नहीं होगा, स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर चाहिए, संपूर्ण स्थापना हो जाएगी तो संपूर्ण विनाश भी हो जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में देखो कितने ढेर हैं, सभी खलास हो जाएंगे। ये होलिका है, सब आत्मा पवित्र होकर के चली जाएंगे, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। त्योहार आदि सभी संगम युग के हैं, शिव के बजे कृष्ण राधे का कृष्ण, हाँ कृष्ण राधे कहकर के कृष्ण को रात्रि में जन्म दे दिए। वास्तव में शिवरात्रि कहनी चाहिए या कृष्ण रात्रि कहनी चाहिए? कृष्ण का जन्म पहले या शिव का जन्म पहले? जो बाप की प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले होना चाहिए और कृष्ण बच्चे का प्रत्यक्षता रूपी जन्म बाद में होना। हाँ, ये बात दूसरी है कि वो शिव निराकार बाप अपने को गुप्त कर देता है, इसलिए 76 में प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्षता वर्ष मनाते हुए भी वो बाप प्रत्यक्ष नहीं होता, अपने को गुम रखता है, गुप्त रखता है, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। तो ये बाप का काम है बच्चों को प्रत्यक्ष करना। फादर सोल सन और सन सोल फादर, ज्यादा पावरफुल कौन है? बच्चे ज्यादा पावरफुल हैं या बाप ज्यादा पावरफुल है? बाप ज्यादा पावरफुल है तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो अपना काम पहले संपन्न कर लेगा। तो भले 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बच्चों ने मनाया, लेकिन प्रैक्टिकल में वो बाप प्रत्यक्ष नहीं होता, अपने को गुप्त रखता है। वो बाप फिर भी प्रत्यक्ष होता है फर्स्ट क्लास बच्चे के द्वारा। कौन सा फर्स्ट क्लास बच्चा है? कृष्ण बच्चा, जिसका शास्त्रों में गायन है। कौन से कृष्ण का गायन है शास्त्रों में? संगमुखी कृष्ण का या सतयुगी कृष्ण बच्चे का? संगमुखी कृष्ण बच्चे का गायन है। कोई ब्राह्मण बच्चा है जिसमें सतयुग में जन्म लेने वाली कृष्ण की सोल प्रवेश करती और प्रवेश करके ब्राह्मणों की संगमुखी दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाती? कब प्रत्यक्ष होती है? कौन से युग की शूटिंग में प्रत्यक्ष होती है? द्वापर युग की शूटिंग में प्रत्यक्ष होती है। इसलिए कृष्ण को कौन से युग में ढकेल लिया? द्वापर युग में ढकेल लिया। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते हैं? कलयुग है रात और सतयुग है दिन। रात में आकर के दिन बनाते हैं। कौन? रात में आकर के दिन बनाते हैं कौन? ज्ञान सूर्य बाप रात में आते हैं। कब आते हैं? रात में। विदेशियों के लिए ज्ञान सूर्य कब उदय होता है? रात्रि के 12 बजे से उनका नया दिन शुरू हो जाता है। और भारतवासियों के लिए प्रातः काल अमृत वेला 5 बजे 6 बजे के लगभग ज्ञान सूर्य उदय मानते हैं। ये अंतर क्यों है भारतवासियों में विदेशियों में? ये अंतर क्यों है? क्योंकि विदेशी बुद्धि के तीखे होते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण वो पहले बाप को पहचान लेते, लेकिन बुद्धि की तीक्ष्णता अकेली काम नहीं करती। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसे नहीं कि दिल को वरीयता न दी जाए, दिमाग को वरीयता दी जाए तो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप प्रसन्न हो जाएगा। बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को क्या चाहिए? दिल चाहिए या दिमाग चाहिए? दिमाग वाले बच्चे प्रिय हैं या दिल वाले बच्चे प्रिय हैं? भावना वाले। भावना, श्रद्धा, विश्वास ये दिमाग की चीज है या दिल की चीज है? दिल की चीज। तो भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? भक्ति श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है? है बाप को तो ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा का मतलब ये नहीं है कि श्रद्धा विश्वास स्नेह को उड़ाई दिया जाए। श्रद्धा युक्त ज्ञान हो, अंधश्रद्धा युक्त ज्ञान नहीं हो। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस चाहिए। पूरे ज्ञानी जो होते हैं बुद्धिवाद का उपयोग करने वाले, वो रावण जैसे ज्ञानी हो जाते हैं। दिल वाला बाप को दिल वाले बच्चे चाहिए, श्रद्धा विश्वासवान बच्चे चाहिए। तो वो शिव ज्योति बिंदु परमात्मा इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है कृष्ण बच्चे के द्वारा। उसको कहा जाता है शिव जयंती, बेहद की रात और बेहद का दिन। तो कृष्ण को भी रात्रि में दिखाई दिया और शिव को भी रात्रि में दिखाई दिया। कारण समझ में आया? क्यों, क्या कारण हुआ? क्योंकि कृष्ण बच्चा भी प्रत्यक्षता का निमित्त बनता है। किसकी प्रत्यक्षता का? बाप की प्रत्यक्षता। तो कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष होता है अमृत वेले में। सुबह 4 बजे कृष्ण की जयंती बताई और शिव की जयंती वास्तव में 12 बजे बताई, लेकिन वो प्रत्यक्ष होता है कृष्ण बच्चे के द्वारा, इसलिए अमृत वेले का विशेष महत्व। दोनों का योग हो जाता।
कृष्ण बच्चा भी योग हो जाता है उसका और शिव बाप का भी उसमें योग हो जाता है। तो बेहद की रात और ये बेहद के दिन है संगम युग में, ये शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे बैठ पड़ते हैं गुप्त और योग बल से राज्य लेते हैं, पढ़ाई कैसे पढ़ते हैं गुप्त बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं। वो यूनिवर्सिटी जो बड़ी बड़ी खोली जाती हैं दुनिया में, वो तो बड़े बड़े शहरों में खोली जाती है, और बाप यूनिवर्सिटी कहाँ आकर के खोलते हैं है? विद्यालय नहीं यूनिवर्सिटी। एक होता है विद्यालय जिसमें बेसिक नॉलेज दी जाती है, काका गागांगा ABCD पढ़ाई जाती है, नर्सरी क्लासेस चलते हैं, और एक होती है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में कौन सी पढ़ाई होती है? बेसिक नॉलेज नहीं होती, बेसिक नॉलेज तो है आधार, ऊपर की पढ़ाई।